Good morning. Namo Buddhaya. Jai Bhim. So we still have to finish exploring the puja.
तो पूजा का अभ्यास करना हमारा अभी भी शेष है.
We're almost halfway through.
तो आधा तो हम पूरा कर चुके हैं.
That means we need another 3 days of retreat.
तो इसका अर्थ है कि हमें और 3 दिनों के शिविर की आवश्यकता है.
So I'm sure you're all willing to stay for longer.
तो मुझे आशा है कि आप और 3 दिन रुकना चाहेंगे.
The trains have been cancelled, so you can't go.
तो ट्रेन कैंसिल हो गए और आप जा नहीं सकते.
So last night I was in the puja, as many of you were.
कल रात आप ही की तरह मैं भी पूजा में था.
And I thought there was a particularly powerful atmosphere last night.
और मुझे ऐसे लगा कि कल बेहद ही एक सशक्त ऐसा वातावरण यहाँ पर था.
Very concentrated, very deep.
बहुत ही एकाग्र और बहुत ही गहरा.
Very beautiful.
और बहुत ही सुंदर.
The shrine had been made up so beautifully.
कल का जो पूजा स्थान था बहुत ही खूबसूरती से तैयार किया गया था.
And a very sort of special atmosphere of harmony.
और सभी के साथ सामंजस्य का एक बहुत ही सुंदर ऐसा यहाँ वातावरण था.
And because we've been looking at this puja, it had much more meaning for us, I think.
और क्योंकि हम इस पूजा का अभ्यास भी कर रहे थे इसलिए हम उसमें अर्थ भी देख रहे थे.
So it's a very special atmosphere indeed.
तो बहुत ही विशेष ऐसा वातावरण था.
And particularly a sense of harmony.
और एक सामंजस्य का जो है वो भाव यहाँ पर उपस्थित.
All of us being very much together at peace with each other. In loving relationship with each other.
और हम सभी यहाँ पे थे एक दूसरे के साथ थे एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक थे प्रेम से थे.
And well, that was an experience of sangha.
और यही जो है संघ का अनुभव होता है.
Because there we were all revering the Buddha Dhamma and Sangha.
क्योंकि वहां पर हम जो है सभी एक साथ बुद्ध धम्म और संघ को नमन कर रहे थे.
All of us bowing to the same ideals.
हम सभी एक ही आदर्श के सामने नतमस्तक हो रहे थे.
All making the same efforts.
और हम सभी एक ही तरह का प्रयास कर रहे थे.
All standing on the same values.
और हमारे सभी के मूल्य जो है वो एक ही तरह के थे.
That is sangha.
और यही संघ है.
And it's not just an idea.
और संघ केवल एक कल्पना नहीं है.
It's a very definite feeling experience.
तो एक बहुत ही ठोस ऐसी ये फीलिंग है भावना है अनुभव है.
And but that is one of the most precious things that we as human beings can experience.
तो एक मनुष्य होने के नाते ये बहुत ही एक ऐसी मूल्यवान चीज है जिसका हम अनुभव ले सकते हैं.
But, you know, family life is often good.
तो आप जानते हैं कि पारिवारिक जीवन अक्सर अच्छा होता है.
Sometimes it's not so easy.
और कभी कभी इतना आसान भी नहीं होता.
But yes, we enjoy our family life. We love our children. We love hopefully love our husband or wife.
तो हम हमारे पारिवारिक जीवन का आनंद उठाते हैं हमारे बच्चों से प्यार करते हैं और शायद हमारी पति या पत्नी से भी हम प्यार करते हैं.
And in the family, at times there is a feeling of harmony and togetherness.
और कभी कभी उस परिवार में हमें सामंजस्य और एकत्रितपन जो है उसका अनुभव भी होता है.
But it's based mainly on our values as a family.
लेकिन एक परिवार के जो मूल्य होते हैं उन मूल्यों पर वो भावना आधारित होती है.
Having a good life, looking after the children and so on.
तो एक अच्छा जीवन होना बच्चों की देखभाल करना और इसी तरह से.
And that's good.
और ये अच्छा है.
But sangha is something bigger, something more than that.
लेकिन संघ उससे बड़ा उससे विशाल ऐसा कुछ है.
Because after all, you feel something special for your own children. But not the same for other children.
क्योंकि होता ऐसा है कि आप अपने बच्चों के लिए तो बहुत विशेष ऐसा अनुभव करते हैं लेकिन दूसरे बच्चों के लिए वैसा आपको अनुभव नहीं होता.
That's natural.
तो ये बहुत स्वाभाविक है.
It's positive.
और ये सकारात्मक भी है.
But sangha goes beyond that because it's directed to people because they are human beings.
लेकिन संघ इससे भी आगे बढ़ता है क्योंकि वो लोगों से इसलिए संबंधित होता है क्योंकि वो इंसान है.
And because they share with us the same ideals.
और क्योंकि वो हमारे साथ उन्हीं आदर्शों को बांटते हैं जो हमारे भी हैं.
So sangha goes beyond even the very positive experience that there can be in family.
तो परिवार में जो एक सकारात्मक अनुभव होता है उससे भी बहुत परे संघ जा सकता है.
Because it's not to do with me and mine.
क्योंकि संघ में मैं और मेरा ऐसा नहीं होता.
In the family, in the end, it's about me and mine.
क्योंकि परिवार में अंत में मैं और मेरा इसी से सब लगा होता है, जुड़ा होता है.
Nothing wrong with that. That's natural. That's normal.
अभी इससे इसमें कुछ गलत नहीं है. ये नैसर्गिक है, स्वाभाविक है.
But sangha goes beyond me and mine.
लेकिन संघ मैं और मेरा इससे बहुत आगे जाता है.
And when you experience sangha in the way that we did for a while last night, it's very, very satisfying.
और फिर जब आप संघ का अनुभव लेते हैं, जैसे कल रात को हमने थोड़े ही समय के लिए लिया था, तो बहुत ही संतुष्टि का हमें अनुभव होता है.
I remember my first real experience of that on my first retreat.
तो मेरा जो पहला शिविर था, उसी में मुझे इसका जो मेरा पहला अनुभव आया था वो याद है.
I think I let slip the other day that it was 45 years ago.
तो कल उसी दिन मैंने आपको बताया था कि ये 45 साल पहले की बात.
I'm sure many of you thinking, oh, Subhuti must have been just 1 year old at that time.
तो मुझे लगता है आप में से बहुत लोग सोच रहे हैं कि Subhuti शायद तब एक ही साल के थे.
I'm afraid I was 21.
मुझे खेद है, लेकिन तब मैं 21 साल का था.
But I remember on that retreat, particularly in pujas, sometimes in meditation, sometimes in talks, I'd experience this wonderful sense of harmony.
तो उस शिविर के दौरान, कभी पूजा में, कभी प्रवचन के दौरान, कभी ध्यान के दौरान, इस ये जो अद्भुत मतलब सामंजस्य की जो भावना है, उसका मैंने अनुभव लिया था.
You'd be sitting there doing the metta bhavana, the maitri vikas for the first time, just trying to develop maitri.
तो मैं वहाँ बैठा था, मेत्ता भावना, मैत्री विकास करने का प्रयास कर रहा था, पहली बार मैत्री का विकास करने का प्रयास कर रहा था.
And you know, I'd open my eyes and I'd see everybody else making the same effort.
और मैं अपनी आंखें खोलकर देखता था, और देखता था कि सभी लोग यही प्रयास कर रहे हैं.
And a wonderful feeling of harmony, of unity.
तो सामंजस्य का, एकता की एक बहुत ही ऐसे अच्छी भावना आ रही थी.
And it made a very deep impression on me as a young man of 21.
तो 21 साल का एक युवा होने के नाते इसका मेरे मन के ऊपर बहुत गहरा ऐसा प्रभाव पड़ा.
And I felt then I wanted to commit myself to that experience.
और फिर तब मैंने तय किया था कि मैं इस अनुभव के प्रति मतलब प्रतिज्ञाबद्ध होने वाला हूँ.
I felt this is what the world should be.
और मुझे ऐसा लगा कि ऐसा ही दुनिया ने होना चाहिए.
This is what the whole society should be.
या एक पूरे समाज ने इसी तरह से होना चाहिए.
So I really did begin at that point to shape my life. On that basis.
उस आधार पे उस वक्त मैंने अपने जीवन को आकार देना शुरू किया था.
So this experience of sangha is the third jewel.
तो ये जो संघ का अनुभव है, यही तीसरा रत्न है.
It's the red jewel.
और ये लाल रत्न है.
The red of maitri.
तो मैत्री का लाल रंग.
So what does the puja say about sangha?
तो पूजा में संघ के विषय में क्या कहा गया है?
We reverence the Sangha and aspire to follow it.
नमन करते हैं हम संघ को और अभिलाषा रखते हैं इसे अनुसरण करने की.
Very interesting. If we're talking about Sangha as this experience of unity, this felt experience of harmony, how do you revere it?
तो ये बहुत ही अद्भुत है कि अगर आप ये इस तरह का सामंजस्य और एकत्रित पना की भावना का अनुभव करते हैं, तो फिर आप उसको नमन कैसे करेंगे?
It's not an idea, it's a felt experience.
तो ये कोई कल्पना नहीं है, ये एक आपने अनुभव की हुई अनुभूति है.
Well, my own experience of sangha is one of reverence.
तो मेरा अपना जो संघ का अनुभव है, ये वो आदर की वो भावना है.
Sitting there last night, it's as if my own little self is sort of merged in something much greater.
तो जब मैं वहाँ पे कल शाम को बैठा था, तो मेरा अपना जो छोटा सा एक स्व था, वो बहुत ही ऐसे किसी विशाल चीज में विलीन हो गया था.
I found last night at certain points, feeling the atmosphere, I felt like bowing to you all.
तो कल मैं जब बैठा था और यहाँ के जो वातावरण का मैं अनुभव ले रहा था, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं आप सबको नमन करूं.
So that the experience of sangha naturally leads to a feeling of reverence.
तो संघ का जो अनुभव होता है, वो अपने आप ही एक आदर की भावना को हम में निर्मित करता है.
And yes, just as I did when I was 21, when you feel it, you want to live by it.
और जब मैं 21 साल का था, और जब मैंने वैसे महसूस किया था, तो वैसे ही जब आप उसे महसूस करते हैं, तब आप उस अनुभव को जीना भी चाहते हैं.
You aspire to follow it.
तो आप उसका अनुसरण करने की अभिलाषा रखते हैं.
You aspire to follow it in the sense of working to create it.
और आप इस तरह से उसका अनुसरण करना चाहते हैं कि आप उस वातावरण को निर्मित करना चाहते हैं.
We experienced that last night.
कल रात को हमने इसका अनुभव किया.
Maybe over the weekend at various points we'll have felt that we're really drawn into something beyond ourselves.
या पूरे हफ्ते में कई बार हमने ऐसा अनुभव किया था कि हम सही में किसी चीज की ओर आकर्षित हो गए थे.
And you know, we're from different backgrounds here.
और आपको पता है कि हम सब यहाँ अलग अलग पार्श्वभूमि से आए हुए हैं.
People from different states.
अलग अलग राज्यों से लोग हैं.
People from the very north of India to the very south of India.
तो भारत के बहुत ही उत्तर से और भारत के बहुत ही दक्षिण से यहाँ पर लोग हैं.
There's somebody from Uttaranchal and there's somebody from Tamil Nadu.
तो कोई उत्तरांचल से है तो कोई तमिलनाडु से है.
And there's somebody from Manipur and somebody from Mumbai.
तो कोई मणिपुर से है और कोई मुंबई से है.
There's even somebody I've heard from England.
और कोई इंग्लैंड से है ऐसा भी मैंने सुना है.
And we come from many different even communities.
और हम अलग अलग समाज से भी आए हुए लोग हैं.
I'm delighted that not everybody here is a Maharashtrian Buddhist.
और मुझे ये जानकर आनंद होता है कि यहाँ पे बैठा हर एक महाराष्ट्रियन बौद्ध नहीं है.
I really like Maharashtrian Buddhists. Please don't understand me.
तो मैं महाराष्ट्रियन बौद्धों को बेहद पसंद करता हूँ.
Some of them are my best friends.
और उनमें से कुछ लोग मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं.
Yes, it's really good that we've got people from so many different backgrounds.
तो ये बहुत अच्छा है कि अलग अलग पार्श्वभूमि से हमारे पास अनेक लोग हैं.
English speakers, Hindi speakers, Marathi speakers, Tamil speakers.
अंग्रेजी बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले, मराठी बोलने वाले, तमिल बोलने वाले.
Telugu.
Telugu bolne wale.
Sorry, nearly forgot. And wagara wagara wagara. Yes, so many different people here from different backgrounds, different types.
तो अलग अलग पार्श्वभूमि से अलग अलग प्रकार के कई लोग यहाँ पर हैं.
You know, very young people like me, very old people.
तो मेरे जैसे बहुत युवा और बहुत बूढ़े लोग भी हैं यहाँ पर.
Men, women, huh?
और स्त्री हैं, पुरुष हैं.
Yes, but when we come together as sangha, all of that goes.
लेकिन संघ के तरह जब हम एकत्रित आते हैं, तो ये सारी बातें चली जाती.
But when we're not experiencing sangha, we're back into our separate identities.
लेकिन जब हम संघ का अनुभव नहीं कर रहे होते, तब हमारी अलग-अलग अपनी जो पहचान होती है, उसमें हम होते.
And then we begin to quarrel.
और तब हम झगड़ा करने शुरू करते हैं.
We begin to compete.
हम एक दूसरे के साथ स्पर्धा करते हैं.
We begin to have enemies.
और हमारे शत्रु भी होते हैं.
So we even if we've got an aspiration to sangha, we fall back into just ordinary human group behavior.
तो एक संघ की अगर हमारे पास अभिलाषा भी हो, तब भी फिर हम एक अलग अलग मतलब ऐसे समूहों में बढ़ जाते.
Issues like nationality, issues like caste, issues like region begin to dominate.
तो राष्ट्रीयता का, क्षेत्र का या जाति का, ऐसे जो भी मुद्दे हैं वो हमारे ऊपर हावी होने लगते हैं.
The war of the sexes begins.
या फिर जो लिंग का जो लड़ाई होती है वो शुरू हो जाती है.
That's a famous phrase in England.
तो इंग्लैंड में एक कहावत है, प्रसिद्ध है.
And yes, the war of temperament.
तो स्वभाव की जो लड़ाई होती है उसकी लड़ाई.
So it's a real struggle for us as human beings to experience sangha.
तो एक मनुष्य होने के नाते हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि हम संघ का अनुभव लें.
And I should make the point that sangha is something that comes and goes.
तो मुझे ये भी बताना पड़ेगा आपको कि संघ ऐसा कुछ है जो निर्माण होते रहता है और नष्ट होते रहता है, जाते रहता है.
Those of us who wear this kesa are members of Triratna Bauda Sangha.
तो हम में से वो लोग जो ये केसा पहन रहे हैं, वो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के सदस्य हैं.
संघ
के सदस्य.
But I'm sorry to say, brothers and sisters, we're not always a sangha.
लेकिन मुझे ये कहते हुए भी खेद होता है कि हम हमेशा ही संघ नहीं होते.
Sometimes Maitreya and I quarrel.
कभी कभी मैत्रीवीर और मैं झगड़ा करते हैं.
It's of course not my fault, it's his.
मेरी गलती नहीं होती, हमेशा उनकी गलती होती.
In our order, we have our quarrels.
तो हमारे संघ में हमारे अपने भी मतभेद हैं.
And anybody who knows any of our centers will know that.
और हमारे केंद्रों को अगर आप जानते हैं तो आपको इस विषय में पता होगा.
We're not always a sangha.
तो हम हमेशा ही संघ नहीं होते.
Because sangha isn't an institution.
क्योंकि संघ ये कोई एक संस्था नहीं है.
संघ isn't a club or a society.
तो संघ ये कोई एक क्लब या कोई एक समाज नहीं है.
It's a quality of human connection.
तो ये मानवीय मतलब संबंधों का एक मतलब गुणधर्म है.
So it comes and it goes.
तो वो आता है और वो जाता है.
What one hopes is that members of the order are more likely to get into that experience than not.
तो आशा ये की जाती है कि संघ के जो सदस्य हैं वारंवार इस चीज का अनुभव ले बजाय इसके कि कभी भी वो अनुभव ने ना आए.
So what this means is that sangha is something that depends on us.
इसका अर्थ ये होता है संघ ऐसा कुछ है जो हमारे ही ऊपर निर्भर होता है.
And we have to work for sangha.
और हमें संघ के लिए कार्य करने की आवश्यकता होती
है. Mainly we have to work on ourselves.
और हमें हमारे ऊपर ही कार्य करने की आवश्यकता होती है.
I'm sure everybody knows that if you want to change India, you have to change one Indian.
तो आपको हर एक को पता है कि अगर आपको भारत को बदलना है तो आपको एक भारतीय को कम से कम बदलना है.
And I'm sure every husband and wife in the room knows which one individual that is.
और यहाँ के हर मतलब पति और पत्नी को ये पता है कि किसको बदलना है.
But I don't mean your wife or husband.
तो मैं ये नहीं कहता कि आपका पति या आपकी पत्नी.
The one Indian you have to change, the one Englishman I have to change is me.
तो एक भारतीय या एक अंग्रेज जिसे मुझे बदलना है वो है मैं.
If you don't know who it is, go and look in the mirror.
तो अगर आप नहीं जानते कि वो कौन है तो आप जाकर आईने में देखिए.
When you're shaving, gentlemen, that's the one you need to change.
तो जब आप शेविंग कर रहे होते तो वो आईने में दिखाई देने वाला जो व्यक्ति है उसे आपको बदलना है.
Ladies, when you're making yourself beautiful, that's the one you need to change.
तो महिलाओं जब आप अपने आप को सुंदर बना रहे होते हैं तो वो जो आईने में दिखाई दे रहे उसे आपको बदलना है.
And when we change ourselves, sangha can emerge when we come together.
और जब हम अपने आप को बदलते हैं तब हम जब एकत्र आते हैं तब संघ का निर्माण होता है.
Yes, so sangha is something we have to work at all the time.
तो संघ ऐसी बात है कि जिसे निर्माण करने के लिए हमें सतत प्रयासरत रहना होता है.
When we keep on working on ourselves, we reach a point at which we can't fall away.
तो फिर जब हम इस तरह से कार्य करते रहते हैं तो हम एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां से हम वापस फिर नीचे नहीं गिर सकते.
In Buddhist tradition, this is known as the point of stream entry.
तो बौद्ध धर्म में इसे स्रोतापत्ति का बिंदु कहा जाता है.
That means that you've entered the stream of the Dhamma that leads on to the Buddha.
तो इसका अर्थ ये होता है कि आप धम्म के ऐसे प्रवाह में प्रवेश कर चुके हैं जो आपको बुद्धत्व की ओर ले जाएगा.
And you can't fall back.
और फिर आप फिर पीछे मुड़ नहीं सकते, पीछे गिर नहीं सकते.
It just flows on and you're just going with it.
क्योंकि वो प्रवाह जो है वो आगे बहते रहता है और आप उस प्रवाह के साथ बहते रहते हैं.
That's not our position, brothers and sisters.
लेकिन वो हमारी स्थिति नहीं है.
Sometimes we're going with the stream.
तो कभी कभी हम प्रवाह के साथ आगे बढ़ते हैं.
Sometimes we're swimming in the opposite direction.
और कभी कभी हम विरुद्ध दिशा में तैरना शुरू कर देते हैं.
Sometimes we're lying on the bank. Relaxing.
और कभी कभी बस हम किनारे पे ऐसे ही आराम करते हुए पड़े रहते हैं.
But these stream entrants, those who've entered the stream of the Dhamma, they can't turn back.
लेकिन वो लोग जो इस धम्म के प्रवाह में प्रवेश कर चुके हैं, स्रोतापत्ति प्राप्त कर चुके हैं, वो वापस नहीं मुड़ सकते.
So when they come together, sangha immediately and naturally flowers amongst them.
तो जब वो एकत्रित आते हैं तो संघ तुरंत ही और बहुत ही स्वाभाविक रूप से वहां पर निर्मित हो जाता है.
That is sangha in the true and highest sense.
तो अपने मतलब सबसे उच्चतर और सबसे वास्तविक स्वरूप में वो संघ है.
No personal attachment gets in the way.
और कोई भी मतलब वैयक्तिक आसक्ति जो रहती है उसकी राह में नहीं आती.
No group identity gets in the way.
तो किसी भी समूह की पहचान वहां पे रोड़ा नहीं होती.
They just meet in perfect harmony.
तो एकदम परिपूर्ण सामंजस्य के साथ वो एक दूसरे से मिलते.
And this is the highest ideal for society as a whole.
तो एक समाज का मतलब पूरी तौर पे देखा जाए तो ये उच्चतर उसके लिए एक आदर्श है.
This is where liberty, equality, and fraternity really become completely natural.
और ये वो जगह है जहाँ पे स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व पूरी तरह से मतलब स्वाभाविक या नैसर्गिक होती है.
No law is necessary, no constitution is necessary. They naturally flower.
किसी संविधान की आवश्यकता नहीं होती, किसी कानून की आवश्यकता नहीं होती, वो सहज रूप से वहाँ पे निर्मित होती है.
But yes, we're not in that position yet.
लेकिन अभी तक हम उस स्थिति में नहीं है.
In fact, we've got a lot of work to do.
और सही कहे तो हमें और भी बहुत कार्य करने की आवश्यकता है।
But we will experience from time to time sangha flowering amongst us.
लेकिन समय समय पे हम ये अनुभव करेंगे कि संघ हमारे बीच में जो है वो खिल रहा है।
Just as we did very, very tangibly last night.
तो जैसे कल रात को बहुत ही थोड़े समय के लिए वो निर्मित हुआ था।
And even at times I feel when I'm talking about these things, everybody suddenly comes together in what I'm talking about.
और कभी कभी मुझे ऐसा भी महसूस होता है कि जब मैं इन सब बातों के बारे में बात करता हूँ तो सब लोग अपने आप ही ऐसे एकत्रित हो जाते हैं।
I can sense as I'm bringing these Dhamma principles to life, we all participate in them.
तो मुझे लगता है कि जब मैं ऐसे धम्म के तत्वों को यहाँ पर लेकर आता हूँ तो हम उसमें अपने आप सहभागी हो जाते हैं।
Then we're a sangha.
तब हम संघ होते हैं।
We're sharing very deeply in these principles.
और बहुत ही गहराई से हम इन तत्वों को जो है वो बांट रहे हैं।
So yes, we reverence the sangha and we aspire to follow it.
और इसलिए हम संघ को नमन करते हैं और उसका अनुसरण करने की हम अभिलाषा रखते हैं।
We aspire to do the work from which sangha will flower.
तो हम वो कार्य करने की अभिलाषा रखते हैं कि जिसमें से संघ मतलब निर्मित होगा।
If you want to grow flowers, you have to create the conditions for them.
तो अगर आप फूलों को उगाना चाहते हैं तो आपको वो परिस्थितियां निर्माण करनी होंगी।
I don't know much about gardening in India. I think it's rather easier than in Britain.
तो भारत में बगीचे लगाने के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे लगता है कि ब्रिटेन से तो यहाँ पे आसान होगा।
But if you want to grow good roses, you have to have the right soil.
तो अगर आपको अच्छे गुलाब के फूल मतलब लगाने हैं तो आपको अच्छी जमीन भी चाहिए होती है।
You need to keep them pruned, huh?
और आपको हमेशा ही उस जमीन को तैयार रखना।
Prune means cutting off the
dead
bits.
पेड़ को जो है वो छांटते रहना पड़ता है।
And then you'll get beautiful blossoms.
और फिर आपको जो है बहुत ही सुंदर ऐसे गुलाब के फूल मिलेंगे।
It's the same with sangha.
और संघ के जैसे संघ के साथ भी ऐसा ही है।
We need to create the conditions in ourselves, and that's what we do when we aspire to follow the sangha.
तो वो परिस्थितियां हमें हमारे भीतर निर्माण करती है और इसी का अर्थ होता है कि हम संघ का अनुसरण करने की अभिलाषा रखते हैं।
So then the text says the fellowship of those who tread the way.
और फिर उसके बाद में कहा गया है कि उन सब लोगों का सहचार्य जो इस मार्ग पर मार्गस्थ हैं।
सहचार्य, yeah, that's a nice word, isn't it? People faring on together.
तो बहुत अच्छा शब्द है सहचार्य कि सभी लोग एक साथ मतलब रह रहे चल रहे इस मार्ग पर।
Fellowship in English has a lovely meaning.
तो अंग्रेजी में फेलोशिप शब्द का बहुत सुंदर ऐसा मतलब है।
Ah, yes, you've probably all seen the Lord of the Rings.
तो आप सभी ने लॉर्ड्स ऑफ द रिंग्स ये का मतलब फिल्म देखी होगी।
You remember the first of those films is called The Fellowship of the Ring.
तो पहली इन फिल्मों में से जो फिल्म थी वो फेलोशिप ऑफ द रिंग्स थी।
And of course at times there is a real feeling of a sangha amongst them, at least in a certain level.
और कुछ हद तक उनमें फिर एक संघ की मतलब भावना भी वहां पर निर्मित हो जाती है।
Until what's the name of the one who Oh, anyway, one of them betrays them. Yeah. So yes, that fellowship is this harmony in a common venture.
तो fellowship या सहचार्य होता है कि एक मतलब जो समान कार्य आप कर रहे हैं उसमें एक सामंजस्य की भावना।
You share the same ideal, you share the same goal.
तो आपकी जो है कल्पनाएं समान होती है, आपका ध्येय समान होता है।
And you feel deep unity in that.
और उसमें आप एक गहरी एकता को महसूस करते हैं।
That's fellowship.
और उसे सहचार्य कहते हैं।
But in this case, what the fellowship is about is treading the way.
तो यहाँ पर ये सहचार्य किस विषय में है? तो एक मार्ग पर मार्गस्थ होने के विषय में है।
A tread is a nice expression. Treading, putting your feet on the ground of the path.
तो tread जो शब्द है इंग्लिश में उसका बहुत ही अच्छा अर्थ है कि आप एक एक कदम बढ़ाते हैं जमीन पर आगे बढ़ने के लिए।
You get the impression of people walking along together on a difficult and even dangerous journey.
तो आपके सामने ऐसा चित्र खड़ा रहता है कि जो सब लोग जो है एकत्र चल रहे हैं, बहुत ही मुश्किल ऐसी उनकी यात्रा है, उस just, यात्रा पे एकत्रित चल रहे हैं।
Just like Frodo and Samwise.
तो जैसे वो फ्रोडो और वो सैमवाइज उस फिल्म में वो एक साथ जा रहे थे।
Aragorn and what's the name of the dwarf? I can't remember. Anyway, just like the Lord of the Rings.
तो वो ऑर्गो और उस फिल्म में जो दूसरे जो पात्र थे वैसे
they're on that journey together
तो वो सभी उस प्रवास पे एक साथ निकलते हैं
and of course it's a classic story isn't it it's a story of overcoming evil
तो वो बहुत ही पुरानी ऐसी मतलब कहानी है कि जिसपे बुराई पे जीत हासिल की जाती है
and well in this case our attempt is to overcome evil in the deepest possible way
और इसमें हमारा भी जो है बुराई पे विजय मतलब बहुत बुराई जो है हमारे भीतर उसके ऊपर विजय पाना हमारा ध्येय है
we're on a journey together to the highest destination possible
तो जो सबसे उच्चतर जो हमारा मतलब गंतव्य है वहां पर जाना हमारी मतलब यात्रा का लक्ष्य
and we feel deep harmony in that
और वो प्रवास करते हुए हम बहुत ही सामंजस्य को महसूस करते हैं
whilst I've been in Maharashtra over many years I've always wanted to go on वारकरी
तो बहुत साल पहले मैं जब महाराष्ट्र में आया था तो हमेशा मैं चाहता था कि मैं वो वारी करते हैं ना लोग उसमें जाऊँ वारकरी बनना चाहते थे
Because I've read and people have told me that on those pilgrimages to Pandharpur there's tremendous harmony
क्योंकि मैंने पढ़ा भी था और लोग मुझे ये भी बताते थे कि जब ये पंढरपुर की जब ये लोग यात्रा करते हैं तो उनमें बहुत ही मतलब सामंजस्य होता है
and there's a wonderful feeling of unity
और बहुत ही एकता की अद्भुत उनमें एक भावना होती है
and that's just to Pandharpur
और ये सिर्फ पंढरपुर तक ही होती है
but this is to the Buddha Dhamma and Sangha
लेकिन ये जो यात्रा है ये बुद्ध धम्म और संघ तक की यात्रा
this is to the highest possible goal
तो जो सबसे उच्चतर मतलब संभव संभाव्य जो ध्येय है उस तक की यात्रा है
those of you from outside Maharashtra I won't explain you can get a Maharashtrian to explain this
तो जो महाराष्ट्र के बाहर के उन्हें मैं नहीं बताऊंगा ये पंढरी की वारी क्या है किसी महाराष्ट्रियन को आप पकड़िए और उसको पूछिए
we're on a journey to Bodh Gaya
तो हम बोध गया के प्रवास पर हैं
we're walking all the way across India to Bodh Gaya
तो हम पूरे भारत से चलते हुए जाएंगे और हम बोध गया तक जाएंगे
to the feet of the Buddha
और बुद्ध के चरणों तक जाएंगे
well, yes, that's the way that we are treading.
तो ये वो राह है जो हम जिसपे हम मार्गस्थ हैं
सो यस वी रेवरेंस द संघ एंड aspire टू फॉलो इट द fellowship ऑफ those हु ट्रेड द वे
तो नमन करते हैं हम संघ को और अभिलाषा रखते हैं इसे अनुसरण करने की जिसमें साहचर्य है मार्गस्थ लोगों का
So then the next part is very, very important indeed.
और उसके आगे का जो भाग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है.
As one by one we make our own commitment, an ever widening circle, the Sangha grows.
तो जैसे एक एक करके हम अपनी प्रतिज्ञाबद्धता जाहिर करते हैं वैसे वैसे इस संघ के वलय का जो है वो विस्तार होते रहता है.
So last night we did puja together.
तो कल रात को हमने इकट्ठा पूजा की थी
And my sense was that everybody, or at least the great majority of people, were really putting themselves into it.
और मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे लोग जो यहाँ पे उपस्थित थे या लगभग सभी लोग अपने बहुत से प्रयास उसमें लगा रहे थे
You were really trying to say the puja with understanding, with sensitivity, with feeling.
तो संवेदनशीलता के साथ भावनाओं के साथ और समझ के साथ आप सभी वो पूजा कहने का प्रयास कर रहे थे
You were making an effort.
आप सभी प्रयास कर रहे थे
You were committed to the puja.
और आप उस पूजा के लिए प्रतिबद्ध थे
You've seen it with meditation too.
और आपने ये ध्यान के साथ भी देखा है
If you're to achieve anything in meditation, you need to commit yourself to the meditation.
तो अगर आपको ध्यान में कुछ हासिल करना है तो आपको उस ध्यान के प्रति कटिबद्ध होना पड़ता है
If you start doing the Anapanasati and halfway through you think, no, I think I'll do Maitri Vikas.
तो अगर आप अनापान सति करना शुरू करते हैं और आधे में पहुंच कर कहते हैं नहीं नहीं मैं अभी मैत्री विकास करूंगा
Or you think, well, no, I think I'll think about something else.
नहीं तो फिर आप सोचते हैं नहीं नहीं मैं किसी और चीज के बारे में सोचूंगा
If you stop making an effort, well, you won't get anything from the meditation.
तो जब आप इस तरह से प्रयास करने से अपने आप को रोक देते हैं तो आपको ध्यान में कुछ भी प्राप्त नहीं होता
You have to commit yourself to the meditation to get anything from it.
तो ध्यान से कुछ प्राप्त करने के लिए आपको ध्यान के प्रति प्रतिज्ञाबद्ध या कटिबद्ध होना पड़ता है
Of course, it's true of anything that you want to achieve in life.
तो आपको जीवन में कुछ भी अगर हासिल करना है तो उसके विषय में ये सत्य है
If you want to get a PhD, you need to commit yourself to it.
तो अगर आपको PhD प्राप्त करनी है तो आपको उसके लिए प्रतिज्ञाबद्ध होना पड़ता है
and so on.
और इसी तरह से
you have to commit yourself to a marriage.
तो अगर शादी करनी है तो भी आपको प्रतिज्ञाबद्ध होना पड़ता है
Because I believe it's not always easy.
क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा ही उतना आसान नहीं होता
I've read in books that it's not always easy.
तो मैंने ये किताबों में पढ़ा है कि ये हमेशा आसान नहीं होता
You have to commit yourself to working.
तो आपको हमेशा कार्य करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होना पड़ता है
Commitment is necessary to any human achievement.
तो कुछ भी मानवीय अगर प्राप्ति है तो उसके लिए प्रतिज्ञाबद्धता आवश्यक है
Some things just come to you quite naturally.
तो कभी कभी कुछ चीजें एकदम नैसर्गिक रूप से आप तक आ जाती
But if you want to go forward, if you want to achieve more, you have to commit yourself.
लेकिन अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं आप और अधिक हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने आप को प्रतिज्ञाबद्ध करना पड़ता
And this is as true of practicing the Dhamma as of anything else.
और धम्म के आचरण के लिए भी ये उतना ही सत्य है जितना अन्य किसी बात के लिए सत्य है
In fact, it's more true of practicing the Dhamma than of anything else.
और देखा जाए तो ये धम्म के बारे में अधिक सत्य है अन्य किसी भी बात की तुलना में
Because practicing the Dhamma is not A part-time occupation.
क्योंकि धम्म का आचरण ये कोई आपका मतलब खाली समय में किया जाने वाला काम नहीं है
It's not a time pass.
ये आपका खाली समय भरने वाला काम नहीं है
It's not a hobby.
ये आपका मतलब छंद नहीं है
What the Dhamma demands is the whole of your life.
तो धम्म आपसे आपका पूरा जीवन मांगता है
Body, speech, and mind until the end.
तो अंत तक आपका काया, वाचा और मन.
So you have to commit yourself if you are to achieve anything.
तो अगर आपको कुछ हासिल करना है, तो आपको अपने आप को प्रतिज्ञाबद्ध करना होता है.
And it takes tremendous energy.
और इसके लिए काफी ऊर्जा की आवश्यकता होती है.
Of course, you can't do that. All at once.
तो अब ये सारी बात आप एक ही समय में नहीं कर सकते।
The Buddha once said that the Dhamma is like the ocean.
तो बुद्ध कहते हैं धम्म एक महासागर की तरह है।
I remember once going to Dapoli in the Konkan.
तो मुझे याद है कि एक बार मैं कोंकण में दापोली में गया था।
And the beaches are beautiful there.
और वहाँ का जो समुद्र किनारा है वो बहुत सुंदर है।
So naturally I wanted to swim.
तो इसलिए बहुत ही स्वाभाविक रूप से मुझे वहाँ तैरने की इच्छा हुई।
But I had to wade so far out into the water to get able to swim that I was almost out of sight of land at one point.
तो लेकिन तैरने के लिए जितनी गहराई की आवश्यकता होती है वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे काफी दूर तक चलना पड़ा और इतना दूर की जमीन नजर नहीं आ रही थी
Because the beach slopes down very very gradually
क्योंकि वहां पे जो समुद्र की गहराई है वो बहुत ही धीरे 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 कम होती है
So the Buddha said that the Dhamma is like that
तो बुद्धा कहते हैं कि धम्म भी इसी तरह है
You're not required just to jump straight in
तो आपको एकदम तुरंत ही उसमें छलांग मारने की आवश्यकता नहीं है
I remember when I was 3 years old I was at the beach with my family
तो मुझे याद है जब मैं 3 साल का था तो मैं अपने परिवार के साथ एक समुद्र के किनारे था
My brothers were older than me.
तो मेरे जो भाई हैं वो मुझसे बड़े थे
So they were jumping in the water, up and down.
तो इसलिए वो पानी में ऐसे छलांगे लगा रहे थे ऊपर नीचे
So naturally I did the same thing.
तो इसलिए मैंने भी वैसा ही किया
I had to be rescued.
और मुझे वहां से बचा कर लाना पड़ा
Because I was nearly drowning.
क्योंकि मैं लगभग डूब रहा था उसमें
That might say something about my character, but we won't go into that.
तो मेरे स्वभाव के बारे में इससे थोड़ा बहुत पता चलेगा लेकिन उसको हम नहीं देखेंगे
But the Dhamma goes down slowly.
लेकिन धम्म में हमें धीरे धीरे उतरना होता है
If you jump straight in, you'd drown.
अगर आप तुरंत ऐसे छलांग लगा देते हैं तो आप उसमें डूब जाते हैं
Maybe you'd go mad.
या आप पागल भी हो जाते हैं
I can't say.
तो मैं नहीं कह सकता क्या होगा
but fortunately the Dhamma slopes down gradually. You gradually get deeper and deeper into it.
लेकिन धम्म की जो गहराई है वो धीरे धीरे बढ़ते जाती है और आप धीरे धीरे उसमें उतरते जाते
First of all, you just put your toe in.
तो सबसे पहले आपको सिर्फ अपना अंगूठा ही पानी में डालना होता है
Maybe some of you here, you're just dipping your toe in for the first time.
और शायद आप में से कई लोग जो यहाँ पे आप अपना अंगूठा ही अभी गीला कर रहे हैं
Maybe some of you are wading in till it's just at your knees.
और कभी कुछ लोग जो है वो अपने घुटनों तक के पानी में उसमें उतर चुके हैं
And maybe some of you are going up to your chest.
और कुछ लोगों की मतलब छाती तक वो पानी आ गया है
Maybe some of you are launching forward into the water fully.
और कुछ लोग शायद उस पानी में और आगे बढ़ने के लिए बस तैयार है.
But you can go as far as we like, as far as we're comfortable.
तो आप वहीं तक जा सकते हैं जहां तक आप समझते हैं कि मैं यहां तक सहजता से पहुंच सकता हूं.
But sooner or later, if you want to practice the Dhamma, you must plunge fully in.
लेकिन आज नहीं तो कल अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि मैं पूरी तरह से धम्म का आचरण करना चाहता हूं तो आपको उसमें छलांग लगानी है.
You must commit yourself to the water.
तो आपको पानी को अपने आप को प्रतिज्ञाबद्ध करना पड़ेगा.
You can't swim if you just stand up to your ankles.
तो अगर बस घुटनों भर पानी में आप अगर खड़े हैं वहां पर तो आप वहां पर तैर नहीं सकते.
You can't swim if you're just up to your knees, huh?
तो अगर घुटनों तक की ऊंचाई तक का पानी है तो भी आप उसमें तैर नहीं सकते.
The water needs to be over your head if you're to swim properly.
तो अगर आपको अच्छे से तैरना है तो पानी को आपके सर से भी ऊपर होना होता है.
So sooner or later you must commit yourself to the water of the Dhamma.
तो आज नहीं तो कल धम्म का जो पानी है उसके लिए आपको प्रतिज्ञाबद्ध होना पड़ता है.
You must throw yourself into the ocean of the Dhamma.
तो धम्म के महासागर में आपको अपने आप को झोंक देना होता है.
To the ocean of the Sangha.
संघ के महासागर में.
You must commit yourself to the Dhamma.
तो आपको धम्म को अपने आप को प्रतिज्ञाबद्ध करना होता है.
And yes, when we make that commitment, the Sangha grows.
और जब हम ये प्रतिज्ञाबद्धता करते हैं तो संघ बढ़ता है.
Of course, you can commit yourself step by step.
हाँ निश्चित ही आप मतलब थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को प्रतिज्ञाबद्ध कर सकते हैं.
In our own community, we offer two different stages of commitment.
तो हमारा जो संघ है उसमें हम प्रतिज्ञाबद्ध के दो अलग अलग स्तर रखते हैं.
Well, in a way, we offer a third stage.
और एक तरह से हम तीसरा भी एक चरण प्रदान करते हैं.
This is a stage that everybody here is participating in.
तो ये एक चरण है जहाँ पे आप में से सभी लोग सहभागी हो सकते हैं.
That's the stage of coming and seeing for a while.
तो ये वो चरण है कि आप थोड़ी देर के लिए आइए और देखिए क्या है.
Living with the Dhamma for a while.
तो थोड़ी समय के लिए धम्म के साथ जीवन व्यतीत करना.
Seeing how you like it.
और देखना कि किस तरह से ये मुझे भा रहा है.
Seeing how you feel.
ये मुझे कैसा अनुभव हो रहा है.
That's our first level of commitment.
तो ये हमारी प्रतिज्ञाबद्ध का पहला चरण है.
We don't require anything of you.
तो हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए.
Well, except for the costs of the food.
हाँ सिर्फ हमें यहाँ जो हम खाना खा रहे हैं उसकी हमें कीमत चाहिए.
But we just invite you to come and try.
तो हम आपको निमंत्रित करते हैं कि आप देखिए और मतलब देखिए क्या.
In early Buddhism, this is called ehi pasiko.
और पुराने बौद्ध परंपरा में इसे कहते हैं ehi pasiko.
Ehi means come.
ehi मतलब आइए.
आइए, yeah. ehi मतलब आइए. And pasiko means see.
और pasiko मतलब देखिए.
Come and see.
तो आइए और देखिए.
आइए देखिए. That's what we're saying to you. That's the first level of commitment.
तो वही हम आपसे कह रहे हैं और ये प्रतिज्ञाबद्धता का पहला चरण है.
You come and try it.
तो आप आते हैं और आप देखते हैं.
In English we have an expression, suck it and see.
तो अंग्रेजी में हम ऐसा कहते हैं कि आप उसे निगल जाइए और देखिए.
You know, somebody gives you a sweet, so you suck it and see whether you like it or not.
तो कोई आपको मिठाई देता है तो आप उसे निगल लेते हैं और फिर देखते हैं कि मुझे पसंद आई या नहीं आई.
Then you can spit it out or continue to swallow it.
तो फिर आप उसे थूक भी दे सकते हैं या पसंद आई तो आप उसे खा भी सकते हैं.
We'll find out later whether you spit it out or continue to suck it.
तो हम बाद में देखेंगे कि आप इसे थूक देंगे या खाना जारी रखेंगे.
But that is a level of commitment.
लेकिन ये प्रतिज्ञाबद्धता का एक चरण है.
You come to retreats, you come to classes.
तो आप शिविरों में आते हैं, आप वर्गों में आते हैं.
You study the Dhamma together.
आप एक साथ धम्म का अभ्यास करते हैं.
That's a first level of commitment.
तो ये प्रतिज्ञाबद्धता का पहला चरण है.
You could say that's a sort of provisional or temporary commitment.
तो आप ऐसे कह सकते हैं ये एक तात्कालिक स्वरूप की प्रतिज्ञाबद्धता है.
If you begin to feel, well, yes, I do really want to take this further and see more deeply, well, then you can take a further step.
तो फिर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं इसे और गहराई से देखना चाहता हूँ और आगे जाना चाहता हूँ तो आप अगले चरण पर जा सकते हैं.
That's the point at which you decide, well, this is the Dhamma family that I want to be associated with.
तो ये वो चरण होता है जब आप ऐसा सोचते हैं कि हाँ ये वो धम्म परिवार है जिसके साथ मैं संबंधित होना चाहता हूँ.
This is the place where I want to practice the Dhamma.
और ये वो स्थान है जहाँ पर मैं धम्म का आचरण करना चाहता
हूँ. I'm going to practice it in the way that they practice it.
और मैं उस तरह से आचरण करना चाहता हूँ जिस तरह से वो लोग इस परिवार के लोग आचरण कर रहे हैं.
There are other ways of practicing.
तो आचरण करने के और भी कई अन्य तरीके हैं.
We've no quarrel with any other way of practicing the Dhamma necessarily.
तो धम्म आचरण करने के जो अन्य भी तरीके हैं उससे भी हमारा कोई विवाद नहीं है.
But we practice it in a particular way here.
लेकिन हम यहाँ पर एक विशिष्ट पद्धति से उसका आचरण करते हैं.
Because if you want to make progress in the Dhamma, you need to practice in one way, if you see what I mean.
क्योंकि अगर आपको धम्म में आगे तरक्की करनी है तो आपको एक ही पद्धति से वो प्रयास करने होते.
You can't go to the bazaar and buy one, you know, take one practice from here, another practice from there. It won't work.
तो आप ऐसा नहीं कर सकती कि आप बाजार में जा रहे हैं, आप एक अभ्यास यहाँ से लेकर आ रहे हो, दूसरा अभ्यास आप वहाँ से लेकर आ रहे हैं.
If you want to get water out of a well, you need to drop your bucket to the bottom.
तो अगर आप किसी कुएं में से पानी निकालना चाहते हैं तो आपको अपनी जो बकेट है वो एकदम पानी के तल तक, सतह तक लेकर जानी पड़ती है.
There's no point in dropping it a little bit down this well, a little bit down that well, a little bit down that well.
तो ऐसा करने में कोई अर्थ नहीं कि आप इस कुएं में से थोड़ा सा पानी निकाल रहे हैं, उस कुएं में थोड़ा सा डाल रहे हैं, उसका थोड़ा सा पानी.
If the water is the same,
तो अगर पानी हर जगह एक ही सरीका है.
But you've got to drop your bucket right to the bottom. I think you've got the metaphor wrong. But anyway, you've got to drop it right to the bottom.
लेकिन अगर आपको पानी चाहिए तो आपका जो बकेट है पूरा नीचे तक, वो कुएं के एकदम तह तक पहुंचना चाहिए.
So yes, you need to commit yourself to a particular mode of practice.
तो आपको जो है एक अभ्यास के एक विशिष्ट पद्धति के लिए अपने आप को प्रतिज्ञाबद्ध करना होता है.
So that's what the next stage is.
तो ये जो है वो अगला चरण है.
You say this is the community where I want to practice. These are the teachings I want to follow.
तो आप ऐसा लगता है कि ये वो समाज है जिसके साथ मैं आचरण करना चाहता हूँ, ये वो अभ्यास है जो मैं सीखना चाहता हूँ.
These are the people I want to develop friendship with.
और ये वो लोग हैं जिनके साथ मैं मैत्री का विकास करना चाहता
हूँ. And at that stage you become what we call a Dhamma Mitra.
और उस चरण पर आप धम्म मित्र बनते हैं.
And there's a simple ceremony at which you simply make three offerings and make a commitment.
तो एक बहुत ही सरल सा एक समारंभ होता है जहाँ पे आप बुद्ध को तीन अर्पण वस्तुएं अर्पण करते हैं.
That's in our tradition, our community.
तो वो हमारे संघ में या हमारी परंपरा में वो ऐसा होता
है. Others do it in different ways and that's okay.
और दूसरे लोग इसे दूसरे तरह से करते हैं और वो भी ठीक है.
We're not saying we are right and everybody else is wrong.
तो हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ हम ही सही हैं और बाकी सब लोग गलत हैं.
But you have to do it some way and this is our way.
और लेकिन आपको किसी ना किसी तरह से इसे करना होता है, हम इसे इस तरह से करते हैं.
So yes, you make at your mitra ceremony, Dhamma mitra ceremony, four declarations.
तो फिर आपका वो जो धम्म मित्र दीक्षा का समारंभ होता है वहाँ पे आप चार चीजें जाहिर करते हैं.
First of all, you declare that, well, you've been in an association with this sangha for at least 6 months.
तो सबसे पहले आप ये बात जाहिर करते हैं कि मैं इस संघ के संपर्क में कम से कम 6 महीने से हूँ.
But then you declare that this is that you are a disciple of the Buddha.
फिर आप ये जाहिर करते हैं कि आप बुद्ध के शिष्य हैं.
The Buddha's teaching is the one you want to practice.
और बुद्ध की शिक्षाएं हैं जिसका आप अनुसरण करना चाहते हैं.
And the Buddha is the ideal that you want to achieve.
और बुद्ध वो आदर्श है या वो ध्येय है जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं.
Then you declare that you will practice the Dhamma at least to practice the five precepts and meditation.
और फिर आप ये जाहिर करते हैं कि आप धम्म का आचरण करेंगे कम से कम इस हद तक कि आप पंचशीलों का आचरण करेंगे और आप ध्यान का अभ्यास करेंगे.
And then you declare that this is the sangha that you're going to practice with.
और फिर आप ये जाहिर करते हैं कि ये वो संघ है जिसके साथ मैं ये अभ्यास या आचरण करने वाला हूँ.
When you've made that commitment, it will make a big difference to you. Regardless of what else happens.
तो जब आप ये प्रतिज्ञाबद्ध इस तरह से होते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही विशेष ऐसा रहेगा, अन्य क्या होता है इससे आपको कुछ नहीं लगेगा.
When you commit yourself, so many things change.
तो जब आप अपने आप को प्रतिज्ञाबद्ध करते हैं तो बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं.
You feel quite differently about the world.
तो दुनिया के बारे में आप बहुत ही अलग से कुछ अनुभव करते
हैं। And you feel much more deeply involved with the Dhamma.
और आप धम्म के अपने आप को बहुत करीब पाते हैं।
So you then begin to learn more deeply how to practice the Dhamma.
और फिर आप धम्म का आचरण किस तरह से किया जाए इसे और गहराई से सीखना आरंभ करते हैं।
And it's as if we members of the order, well, we respond to you in accordance with your commitment.
तो फिर आपके जो जैसे प्रतिज्ञाबद्धता होती है उसके अनुसार हम संघ के सदस्य आपको प्रतिसाद देते हैं।
We provide facilities for you.
तो हम आपके लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं।
So you have access to a deeper level of practice.
तो आप आचरण की एक गहराई तक आपको जो है वो आप वहां तक पहुंच सकते हैं।
But well, some people want to go further still.
लेकिन कुछ लोगों को उससे भी और आगे बढ़ना होता है।
People want to make a deeper commitment still.
और इससे भी गहरी प्रतिज्ञाबद्धता लोगों को करनी होती है।
They really want to put the three jewels completely at the heart of their lives.
तो उनके जीवन के एकदम केंद्र में वो त्रिरत्नों को रखना चाहते हैं।
And then, well, you ask to be ordained into the Triratna Bauddha Sangha.
और तब आप त्रिरत्न बौद्ध संघ में दीक्षा के लिए आप विनंती करते हैं।
And well, we prepare you for that.
और फिर हम तब उसके लिए आपको तैयार करते हैं।
It can be quite a long preparation.
तो उसके लिए कई सालों का समय लग सकता है। You are delayed.
It's not her fault. No, we the preparation involves many different aspects.
तो इस तैयारी के बहुत अलग-अलग से पहलू होते हैं।
Of course, it's principally a deepening of your own practice.
तो इसमें आपको अपने आचरण में भी गहराई लानी होती है।
Many different things need to be looked at and worked with.
तो बहुत सारी अलग-अलग चीजों की ओर देखना होता है, उसके साथ कार्य करना पड़ता है।
And we need to deepen our connection with you.
और हमें हमारा भी आपके साथ संबंध जो है वो और गहरा करना होता
And again, है। We provide special retreats, special facilities for people who've asked for ordination.
और जो लोग इस तरह से दीक्षा के लिए विनंती करते हैं उनके लिए विशेष शिविरों का और विशेष सुविधाओं को उपलब्ध कराने का आयोजन किया जाता
And then,
है।
And then there's a ceremony, a quite simple ceremony.
और उसके बाद एक समारोह होता है और बहुत ही सरल सा वो समारोह होता है।
It often takes place after a very long, very deep retreat.
तो एक बहुत ही बड़े और बहुत ही गहरे शिविर के पश्चात वो संपन्न होता है।
And in that ceremony, you make your lifelong commitment to the three jewels.
उस समारोह में आप त्रिरत्नों के प्रति अपने मतलब जीवन पर्यंत की प्रतिज्ञाबद्धता को जाहिर करते हैं।
You go for refuge to the Buddha, Dhamma, and Sangha.
तो बुद्ध धम्म और संघ को आप शरण जाते हैं।
We say at this point you do it effectively.
और हम कहते हैं कि इस वक्त आप उसे परिणामकारक रूप से कर रहे हो।
In other words, you really are able to live your life on the basis of the three jewels.
और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो त्रिरत्नों के आधार पर आप अपना जीवन को व्यतीत करना करते हैं।
Of course, mistakes are made.
और ये भी है कि गलतियां भी होते रहती हैं।
I'm afraid many mistakes.
और बहुत सी गलतियां होती हैं।
Just because you're a member of our order doesn't mean that you're at all perfect.
तो सिर्फ आप हमारे संघ के सदस्य हैं इसका अर्थ ये नहीं होता है कि आप हर तरह से परिपूर्ण हैं।
But you're able to commit yourself again and again and again.
लेकिन कम से कम आप अपने आप को बार 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 प्रतिज्ञाबद्ध कर सकते हैं।
And that's what this case signifies.
और ये केसा उसी चीज का प्रतिनिधित्व करता है।
So our sangha began in London, I think with just 10 people.
तो हमारे संघ की शुरुआत लंदन में सिर्फ 10 ही लोगों के साथ हुई थी।
Now we have 2,000 members all over the world.
तो आज लगभग दुनिया में 2,000 लोग उसमें हैं।
I think order members come from about 70 different countries in the
और
world.
और जो धम्मचारिणी आए हैं वो 70 अलग-अलग देशों में से आते हैं।
In India we began in 1979.
और भारत में हमने 1979 में शुरुआत की थी।
One of Sangharakshita's senior disciples A colleague of mine, Dhammachari Lokamitra, came and began the movement here.
तो संगरक्षिता के जो एक वरिष्ठ शिष्य हैं, जो मेरे भी सहचारी हैं, धम्मचारी लोकमित्र, वो यहाँ पर आए और उन्होंने ये कार्य शुरू किया.
And naturally, he worked first with those who'd come into Buddhism because of Dr. Ambedkar's inspiration.
और शुरुआत में फिर उन्होंने उन लोगों के साथ कार्य किया जो बाबा साहब अंबेडकर की वजह से बौद्ध धर्म की ओर आए थे.
And those wonderful Maharashtrian Buddhists are still the majority in India.
और ये बहुत खूबसूरत जो महाराष्ट्र बौद्ध लोग हैं वो आज भी महाराष्ट्र में सबसे अधिक मात्रा में.
But I'm glad to say that we have people from many different states now in our order.
लेकिन मुझे आनंद होता है ये बताते हुए कि बहुत सारे अलग-अलग मतलब राज्यों में से भी हमारे संघ में सदस्य हैं.
And a number of different communities.
और बहुत सारे अलग-अलग समाज से भी आए हुए लोग.
Of all different kinds.
और बहुत ही अलग-अलग प्रकार के भी लोग हैं.
So yes, we as aim to spread. The ever widening circle in India too.
और ये जो हमारा संघ का निरंतर मतलब विस्तारित होने वाला वलय है इसे भारत में भी इसका विस्तार हम कर रहे हैं.
So that more and more people can experience this wonderful unity and harmony of Sangha.
ताकि अधिक से अधिक लोग संघ की जो है ये बहुत सी अद्भुत ऐसे सामंजस्य और एकता की भावना का अनुभव ले सके.
So that's what Sangharakshita means by as we make our own commitment one by one, the Sangha grows.
और फिर संगरक्षित का कहने का यही तात्पर्य है कि जैसे जैसे एक एक करके हम प्रतिज्ञाबद्ध होते जाते हैं तो संघ का जो वलय है उसका विस्तार होते रहता
है. It's a circle that expands.
तो ये एक मतलब वलय है जो जिसका विस्तार होते रहता है.
But notice we do it one by one.
लेकिन ध्यान दीजिए कि हम ये एक एक करके करते हैं.
You make your commitment as an individual.
तो आप अपनी प्रतिज्ञाबद्धता एक व्यक्ति के तौर पे करते हैं.
Nobody can do it for you.
कोई भी आपके लिए ये नहीं कर सकता.
Nobody can do it to you.
आपको भी ये कोई नहीं कर सकता.
You have to make that commitment yourself.
तो ये प्रतिज्ञाबद्धता जो है वो आपको स्वयं ही लेनी होती है.
But when you make that commitment yourself, you find yourself part of this wonderful unity which can flower from time to time.
लेकिन जब आप ऐसा करते हैं तो फिर आप अपने आप को उस वलय का या संघ का एक हिस्सा पाते हैं जो वक्त वक्त पे मतलब खिलती है.
So I've explored quite deeply the Buddha, Dhamma and Sangha.
तो मुझे लगता है कि बुद्ध धम्म और संघ को मैंने बहुत गहराई से देखा है.
I have hardly I haven't touched on the offerings at all.
तो ऑफरिंग का या अर्पण का जो हिस्सा है उसको मैंने छुआ भी नहीं है.
Fortunately, the words are very clear.
मुझे लगता है कि वहाँ पे जो शब्द है वो बहुत ही स्पष्ट है.
Although there's a wealth of meaning there that we could easily unfold.
लेकिन यहाँ पे शब्दों की ऐसी समृद्धि भी है कि जिससे हम आसानी से और भी देख सकते हैं.
But I think I've said enough for today.
लेकिन मुझे लगता है कि आज के लिए मैं पर्याप्त कह चुका हूँ.
We offer because that's our way of expressing our reverence.
तो हम अर्पण करते हैं क्योंकि हमारे नमन की हमारे आदर की अभिव्यक्ति करने का वो एक तरीका है.
When you like somebody, when you admire somebody, you want to give them something.
तो जब आप किसी को पसंद करते हैं तब आप उसने कुछ चीज देना चाहते हैं.
So we give flowers, candles and incense.
तो हम पुष्प देते हैं, धूप देते हैं, दीप देते हैं.
These are the universal offerings in Buddhism.
तो बौद्ध धर्म में सभी जगह किए जाने वाली ये अर्पण वस्तुएं.
And the beautiful meaning is spelled out in this puja.
और इस पूजा में उसका बहुत ही खूबसूरत ऐसा अर्थ बताया गया है.
So I'm going to neglect that duty.
तो वो भाग में उसकी तरफ टाल देने वाला हूँ उसकी ओर देखना.
Another day maybe we can look at those.
तो किसी और दिन शायद हम इसकी ओर देख सकते हैं.
Well, you know, for instance, our bodies are like flowers, and one day they'll fade.
तो हमें ये पता है कि हमारा शरीर भी जो है फूल की भांति है और एक दिन वो मुरझा जाने वाला
That's
है.
It's a very, very deep reflection.
और ये चिंतन करने के लिए बहुत ही गहरी ऐसी बात है.
And we'll have to leave that for another time.
और किसी और समय के लिए हमें इसे छोड़ देना होगा.
I did just want to mention the mantra that we used.
मुझे सिर्फ वो मंत्र जो हमने कल प्रयोग किया था उसके विषय में कहना है.
मुनि मुनि महामुनि शाक्यमुनि साधु. Well, in a way that the mantra is self-explanatory.
तो अपने आप में वो मंत्र स्वयं ही बहुत कुछ कहता है.
It's sort of almost playing with the name, with the qualities of the Buddha.
तो उस मंत्र में हम जो है बुद्ध के गुणों का मतलब बात कर रहे हैं.
You know, when you're in love, you say such sweet things to your loved one.
तो जब आप मतलब किसी से प्यार करते हैं तो जिससे आप प्यार करते हैं उसके लिए आप बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं.
Oh, go on, you did once when you were young. I know.
या जब आप युवा थे तब आपने ऐसे की होगी.
But it's sort of a bit like that. When you really love, when you really admire you love to say the name.
तो ऐसा होता है कि जब आप सही में किसी से प्यार करते हैं, आप उन्हें पसंद करते हैं, तो आप उनका नाम लेना चाहते हैं.
So that's what you're sort of doing with Muni Muni.
तो फिर जब आप वो मंत्र कहते हैं, तो आप वही कर रहे हैं.
You're calling the Buddha to mind.
तो आप जो है बुद्ध को अपने मन में लेकर आ रहे हैं.
It's interesting. There's an etymology given for mantra, which is probably not true, but it's very nice.
तो मंत्र का मतलब उत्पत्ति कहाँ से हुई इसके बारे में एक बात कही गई है जो शायद सही नहीं है सच नहीं है.
The first part of course is man and then there's trap. Yeah?
तो जो मंत्र शब्द का पहला भाग है वो मन है और फिर त्र है.
Well, man means mind.
तो मन का अर्थ होता है मन.
And that is probably correct as an etymology.
और अगर शब्द की उत्पत्ति को देखा जाए तो ये शायद सही भी है.
But sometimes it's said that tra means that which protects the mind.
तो कभी कभी कहा जाता है कि त्र मतलब वो जो मन का रक्षण करता है संरक्षण करता है.
But it doesn't protect it magically.
लेकिन ये कोई जादू से उसका मतलब संरक्षण नहीं करता.
When you're thinking of the Buddha, well, nothing bad can come in your mind.
तो जैसे आप बुद्ध के विषय में सोचते हैं तो उस वक्त वैसे ही स्वाभाविक रूप से कुछ भी बुरी चीज आपके मन में नहीं आ सकती.
When you're concentrating on something very, very positive, negative things can't get in.
तो जब आप किसी मतलब बहुत ही सकारात्मक चीज पे अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो नकारात्मक बातें वहाँ नहीं आ सकती.
So we can use a mantra like that.
तो मंत्र का इस्तेमाल हम उस तरह से कर सकते हैं.
To focus our minds on the Buddha and the Buddha's qualities.
तो बुद्ध और बुद्ध के गुणों पे अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए हम उसे इस्तेमाल करना.
And this is a way you can keep your mind protected.
और इस तरह से आप अपने मन को संरक्षित रख सकते हैं.
If you find yourself in a situation where you're very anxious or very upset, say a mantra.
तो अगर आप अपने आप को ऐसी स्थिति में पाते कि आप बहुत उदास है चिंतित है तो आप मंत्र पठन कर सकते हैं.
मुनि मुनि महामुनि शाक्य मुनि साधु.
तो आप कह सकते हैं मुनि मुनि महामुनि शाक्य मुनि साधु.
Your mind will immediately go to the Buddha.
तो आपका मन जो है तुरंत बुद्ध की ओर चला जाएगा.
Then your mind will settle.
और फिर आपका मन तब स्थिर हो जाएगा.
You can even just say Buddha, Buddha.
या सिर्फ आप बुद्ध बुद्ध इतना ही भी कह सकते हैं.
Sometimes it's said you say Buddha as you're breathing out, no, breathing in, da, as you're breathing out.
तो कभी कभी जब आप सांस अंदर लेते हैं तभी आप बुद्ध कह सकते हैं और जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं तब आप ध कह सकते हैं.
And that helps you to keep your mind clean and clear.
और उससे आपका मन जो है वो स्वच्छ और स्पष्ट रहने में सहायता होती है.
But I just wanted to explain that chant that we did last night.
मैं सिर्फ आपको जो कल हमने मंत्र का पठन किया था उसके बारे में थोड़ा बताना
चाह रहा था. To do with magic or anything like that.
तो इसका जादू या ऐसी किसी बात से कोई संबंध नहीं.
Well, it's what somebody called ordinary magic.
लेकिन आप इसे एक सर्वसामान्य तरह का जादू कह सकते हैं.
The magic that is not magic.
ऐसा जादू जो जादू नहीं है.
The magic that is simply, if you like, the scientific processes of the mind.
तो ऐसा जादू जिसमें मन की वैज्ञानिक प्रक्रियाएं शामिल हैं.
When you're concentrating on this, you're not concentrating on that.
क्योंकि जब आप इस चीज पे ध्यान केंद्रित हुए हुए हैं तो आपका ध्यान उस चीज पर केंद्रित नहीं है.
So perhaps when you find yourself in difficulties, you can remember that.
तो जब आप अपने आप को मुश्किलात में पाते हैं तो आप इन बातों को याद रख सकते हैं.
And of course when we came together, we were chanting that together.
और निश्चित ही हम जब सब साथ इकट्ठा आए तो हम उसका पठन कर रहे थे.
So our minds were harmonized in the Buddha.
तो हम सभी के मन एक सामंजस्य में आ गए थे और हम बुद्ध की और हमारा ध्यान केंद्रित था.
And that's Sangha.
और वो संघ है.
Thank you.